हे परमपिता परमात्मा, ओम के रहस्य को खोल दीजिए। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कीजिए। ओम तत्सत, परमात्मा ने नमः। ओम शांति शांति शांति। तो प्रेयर के बाद हम शुरू करते हैं, पहले मंत्र से ही एक बार फिर से समझते हैं। मांडुक्य उपनिषद जो है उसका पहला मंत्र ओम से शुरू होता है। ये ओम क्या है? ये अक्षर ही सर्व है। कहा ये जो ओम है यही सब कुछ है, सब उसी की व्याख्या है। भूत भविष्य वर्तमान सब ओंकार ही है। तो अपने आप में ये बहुत ही पावर पैक सेंटेंस है। यह अक्षर जिसका क्षय नहीं हो सकता ही सर्व है, सब है, इसमें सब आ गया। अब आप कहोगे इसमें सब आ गया, इसका क्या मतलब है? एक अद्भुत संकेत बना दिया। जैसे ही इसको याद करेंगे मेन बात याद आ जाएगी, मेन कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा। तो एक छोटा सा जैसे उदाहरण लेते हैं, छोटी छोटी चीज़ें अगर आप देखें तो मंदिर भी एक संकेत है, गीता भी एक संकेत है, जितने ग्रंथ हैं वो हमारे को एक संकेत करते हैं। लेकिन कहा कि ग्रंथ पढ़ने का कहाँ किसके पास टाइम है, इतना समय नहीं। बस इस एक ओम को जान लो और आप सब कुछ जान लोगे, क्योंकि यही सब कुछ है। और इसकी व्याख्या और ये सब ही मतलब इसमें समाहित है। भूतकाल भी, भविष्य भी, वर्तमान भी, सब ओंकार में समाहित है। और ये त्रिकालातीत है, तीनों कालों के परे भी यही ओम है। अब ये पहला मंत्र कल हमने पढ़ा था, हमने कहा था कि पहले 12 के 12 मंत्र एक बार पढ़ लेंगे और फिर उनके बाद इनका जो डिटेलिंग है वो करेंगे। दूसरा मंत्र, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, यह आत्मा ब्रह्म ही है, ऐसा ये जो हमारा आत्मा है ये चार पदों वाला है। पहला पद आपको याद होगा विश्वानर, प्रथम पद जिसका स्थान जागृत है, बाहर की जिसकी प्रज्ञा है। दूसरा जो पाद है वो है तेजस। तो इसका जो ये सूक्ष्म विषयों को भोगता है, विश्वानर जो है वो स्थूल विषयों को भोगता है। तो तेजस दूसरा इसका पाद है, दूसरा इसका डायमेंशन है। तीसरा जो है वो है प्रज्ञा, सोता हुआ भी, अंदर स्वप्न भी नहीं है, सुषुप्ति की अवस्था में, और तब जो अनुभव करता है दैट इज कॉल्ड प्रज्ञा। और इसका चौथा डायमेंशन क्या है? तो जो अगला मंत्र है उसमें सातवें मंत्र में कहा, सातवें आठवें मंत्र में, कि जो न अंदर की ओर प्रज्ञा वाला है, न बाहर की ओर प्रज्ञा वाला है, न दोनों ओर प्रज्ञा वाला है, न प्रज्ञा से घनीभूत ही है, न जाने न जानने वाला, न देखा जा सकता है ऐसा, न व्यवहार में आ सकता है, अरे बाबा रे, लक्षणों से रहित, केवल चिंतन में आ सकता है, उपदेश में नहीं आ सकता। तो एकमात्र आत्मा का होना ही उसकी प्रतीति है, हर प्रकार के प्रपंच से इन सब से परे है वो, शिव है वो, अद्वैत है वो। और इसे चौथा पाद कहा और कहा कि ये सबसे ज्यादा जानने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगले मंत्र में कहा कि ऐसा वो आत्मा जो अक्षर दृष्टि वाला है, मात्राओं का यथार्थ रूप ओंकार ही है। तो इसमें कौन कौन से हैं कि चार मात्राएं हैं। जो पाद हैं इसके, जो इसके डायमेंशन हैं, वही इसकी मात्राएं भी हैं। इनको हम अकार, उकार, मकार ऐसे इसको जानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला जो मंत्र है वो कहता है कि जागर स्थान वाला जो वैश्वानर है वो ही अकार है। ओके, तो पहले हमको चार इसकी मात्राएं बता दी, पहले चार पद बता दिए, चार डिमेंशन बता दिए, और फिर चार डिमेंशन को जोड़ा चार चारों मात्राओं के साथ। तो पहली जो है वो जिसका जागर स्थान वैश्वानर है, और ये उसकी पहली प्रथम मात्रा है। जो इस प्रकार जानता है उस सारी कामनाओं को प्राप्त करता है और सब में प्रधान होता है। ऐसा भला इसके जानने मात्र से क्या हो जाएगा? हाँ, इसको हम समझेंगे। तो ओम के विषय में चार बातें हमको स्पष्ट हैं, चार इसमें मात्राएं हैं और चार इसके डायमेंशंस हैं। और इनके चारों डायमेंशंस के नाम क्या हैं? वैश्वानर, फिर उसके बाद दूसरा, आपको आपको ऐसे ऐसे एक बार पकड़ में आ जाए, चारों के चारों आपको पकड़ में आ जाए, दूसरा तेजस, तीसरा प्रज्ञा, और चौथा जिसे आप अद्वैत कह सकते हैं, है ना, जिसे आप शिव कह सकते हैं, वो चौथा डायमेंशन है। और ये चारों जो मात्राएं हैं ओम की, इसमें जो पहली मात्रा आकार की मात्रा है जिसे कहा, वो आकार की मात्रा क्या है? विश्वानर का प्रतीक है। दूसरी जो उकार की मात्रा है वो किसको वो रिप्रेजेंट करती है? तेजस को रिप्रेजेंट करती है। और जो मकार की मात्रा है वो किसे रिप्रेजेंट करती है? वो और भीतर, तो विश्वानर, तेजस, वो प्रज्ञा को रिप्रेजेंट करती है। और जो चौथी मात्रा है वो उस शिव को, उस अनंत को, उस परम चैतन्य को रिप्रेजेंट करती है। तो चलो, ये बातें तो हमको थोड़ी सी कल भी हमने की थी, और आगे चल के देखते हैं। तो दूसरी जो मात्रा उकार की मात्रा है उसको तेजस के साथ जोड़ा, प्रज्ञा की जो मात्रा है उसको सुषुप्ति के साथ जोड़ा, और फिर उसके बाद में जो चौथी है, जो मात्रा रहित इसका होना है, चौथी मात्रा से क्या तात्पर्य है? तीन मात्राएं थी, तीनों तो बता दी, लेकिन कहा कि एक अदृश्य भी है। वो जो अदृश्य है वो अव्यवहार्य है, वो प्रपंच रहित है, वो शिव है, अद्वैत है, ओंकार है, आत्मा की भी आत्मा है। तो जो इस प्रकार उसे जानता है वही जीता है। तो ये सारे मंत्रों को मैंने एक बार आपके लिए पढ़ दिया, अब हम एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। क्या पूरे ब्रह्मांड में ओम जो है वो सृष्टि का ओरिजिनेटर कैसे हो सकता है ना? हर चीज का ओरिजिन उसी से कैसे हो सकता है? तो यहां पर थोड़ा हमको एक बात को समझना पड़ेगा। पूरा जो अनंत अस्तित्व है, अभी थोड़ा इसको विज्ञान की दृष्टि से भी समझने का कोशिश करेंगे, पकड़ने की कोशिश करेंगे, और एक एक करके इसको पकड़ दें। तो पूरा जो ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड में वही एक परम तत्व पर ब्रह्म सर्वत्र वही व्याप्त है, और फिर एक प्रिमोर्डियल साउंड, एक ऐसी ध्वनि पैदा हुई, एक ऐसा वाइब्रेशन पैदा हुआ। पहले पूरा जो अस्तित्व था वो हर प्रकार के वाइब्रेशन से रहित था, और जैसे ही पहला वाइब्रेशन हुआ, स्पंदन हुआ, सारी सृष्टि अस्तित्व में आई। तो स्पंदन ही अस्तित्व है, सबसे पहली बात तो हमको ये समझ लेनी चाहिए। विचार एक स्पंदन है, ये शरीर भी एक स्पंदन है, हम किस तरह के भाव हमारे पास हैं वो भी एक स्पंदन है, एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन। ये बात अगर हमको समझ में आ जाती है तो फिर हम समझ सकते हैं कि ओम से सारी सृष्टि कैसे पैदा हुई। एवरीथिंग इज अ वाइब्रेशन, ये बात तो आसान है समझना। क्यों? आज आज विज्ञान भी हमको क्या कहता है, सारा का सारा जो जगत है वो पदार्थ से बना है। पदार्थ किससे बना है? क्वांटम पार्टिकल से मिलके बना है। क्वांटम पार्टिकल्स जो है वो ऊर्जा से बने हैं, और वो ऊर्जा हमेशा स्पंदित होती रहती है। तो सारा ब्रह्मांड जो है वो उसी से बना है। तो उस परम का ये संकेत है, ओम उस परम का संकेत है, और एक छोटा सा मैं बात बताऊं आपको, चार तरह के संकेत ये करता है। पहला, जैसे आकार के बारे में आपने बात की थी, तो ये रिप्रेजेंट करता है ब्रह्मा जी को, द क्रिएटर। उकार की जब हम बात करते हैं तो रिप्रेजेंटर, जो जो प्रेजेंट करते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं, सारे सृष्टि को चलाते हैं। और फिर भगवान शिव जो डिस्ट्रॉयर। तो इस ओम में अ उ और म, इन तीन मात्राओं में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों आ जाते हैं। और जो चार चौथा है, जिससे ये तीन प्रकट होते हैं और बाद में तीनों उसी के भीतर समा जाते हैं, वो चौथा कौन है? वो भी इस ओम में ही छिपा हुआ है, लेकिन उसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, इसलिए उस पर अभी कोई बात नहीं है, उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो पूरा सृष्टि जो है वो ओम से कैसे बनी? दैट एवरीथिंग इज वाइब्रेशन, इट्स ऑल रेजोनेंस, इट्स क्रिएटिंग एवरीथिंग। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब हम ये बात करते हैं तो ये जो ओम की जो चार सारी मात्राएं हैं, वो एक और चीज को संकेत करती हैं, चेतना का स्तर। तो जैसे पहला स्तर में क्या कहा? जागृत अवस्था। अभी हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो कॉन्शियसनेस हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वेकिंग कॉन्शियसनेस है। इसके बाद ड्रीम कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस करते हैं सपनों में। उसके बाद क्या है, उसके परे कौन है? कि उसके परे जो है वो विजडम कॉन्शियसनेस है, प्रज्ञा है। और उस प्रज्ञा के परे क्या है? कि उस प्रज्ञा के परे जो है वो परम तत्व है। दैट्स इट। तो चेतना की तीनों अवस्थाओं का वर्णन भी इसी ओम में आ जाता है। ब्रह्म विष्णु महेश वो भी इसी ओम में आ जाते हैं। ये बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। तो जब हम ओम का उच्चारण करते हैं या ओम की हम साधना करते हैं, तो कैसे जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए? अब एक एक करके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, एक और ब्रीदिंग के डायमेंशन से ओम को जानने और समझने का प्रयास करते हैं। जब हम आकार का अभ्यास करते हैं तो हमारी जो लंग्स हैं उनके ऊपर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, और हम डीप, वो मतलब उसको लंग्स को खोलते हैं, अगर अगर भौतिक जगत पे इसके प्रभाव को देखें तो। जब हम उकार का अभ्यास करते हैं तो डायफ्राम ब्रीदिंग शुरू हो जाती है, और जब हम मकार का अभ्यास करते हैं तो और गहरे में जो हमारा जो नेवल ब्रीदिंग है वो शुरू हो जाता है। और जो ब्रीदिंग के चैनल्स हैं, इनके थ्रू हम अपने भीतर प्राण को लेते हैं, हम अपने भीतर इस वाइटल एनर्जी को सोखते हैं, वो वाइटल एनर्जी हमारे भीतर जो है चैनलाइज होती है। अंदर भी तीनों नाड़ियां जो हैं वो इसे रिप्रेजेंट करती हैं, इंगला, पीड़ा और सुषुम्ना। और व्यक्ति के भीतर तीन प्रकार की शक्तियां हैं, तीन प्रकार की मौलिक शक्तियां हमारे पास हैं। आप सबके से शायद एक बार पहले भी मेरी बात हुई थी, उसको भी यहाँ इसके साथ ही जोड़ के देखना चाहिए। वो तीन प्रकार की शक्तियां कौन सी हैं? गीता जी के 18 अध्याय में से पहले 6 अध्याय कर्म की शक्ति के बारे में बात करते हैं, जिसे हम कहते हैं पावर ऑफ वॉल्यूशन, कर्म की शक्ति। दूसरा जो अगला मतलब पड़ाव है, अगले जो 6 अध्याय हैं, वो 6 अध्याय किसको रिप्रेजेंट करते हैं? भाव को, भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे भीतर एक भाव की शक्ति है। और तीसरी प्रकार की जो शक्ति है, गीता जी का 13वें से 18वां जो चैप्टर है वो ज्ञान की शक्ति के विषय में है। तो हम इसको क्या कहते हैं? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग। अगर साधारणतः बोलेंगे एक्शन, फीलिंग्स, थॉट्स, पूरे जीवन को आप तीन शब्दों में बोल सकते हो, एक्शन, फीलिंग, थॉट, या आप एक्शन को बिहेवियर भी बोल सकते हैं। हमारा जो बिहेवियर है वो हमारी फीलिंग्स पे डिपेंड करता है, फीलिंग्स हमारे थॉट्स पे डिपेंड करती हैं। सो हम क्या सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं, जैसा हम महसूस करते हैं वैसा हम बिहेव करते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं उसका हमको एक आउटपुट प्राप्त होता है कर्म के सिद्धांत के अनुरूप। वैसा ही हमारा जीवन जो है वो निर्मित होता रहता है। तो ओम इन तीन शक्तियों को भी रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ कॉग्निशन, पावर ऑफ वॉलिशन, पावर ऑफ इमोशन। इजंट इट इंटरेस्टिंग, एक छोटे से संकेत में पूरी सृष्टि के ज्ञान को रख दिया, भर दिया। इसको देखते रहो और तुमको सब याद आता रहेगा। दैट वॉज रियली डीप। तो जब हम ओम की साधना करते हैं तो कैसे साधना करें? अब ये मांडुक्य उपनिषद हमारे पास एक ग्रंथ है और इसमें हम स्टेप बाय स्टेप इस पूरे को समझेंगे। ग्रंथ में केवल 12 मंत्र जो हैं वो दिए गए हैं। अभी आज के इस सत्र में हमने इनको पढ़ लिया है सारे मंत्रों को। अगले सत्र में एक 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 मंत्र को जीवन में कैसे उतारें, उसको कैसे प्रैक्टिकल, उसको अप्लाई कैसे करें, उन सब विषयों के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। अभी एक मंत्र जो पहला मंत्र है उसको जीवन में कैसे उतारें, उससे हम आज के सत्र में ले सकते हैं। तो पहला मंत्र कहता है कि यह अक्षर, ये ओम ही सर्व है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ओम जिस चेतना की चार अवस्थाओं को संकेत करता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति की अवस्था और तुर्य अवस्था, ये चेतना ही सब कुछ है, यही सारे जगत को प्रकट करती है। तो चेतना और चेतना के चारों रूप। अब हम चेतना के जिस स्तर पर हैं हम जीवन को उतना ही देख पाते हैं, उतना ही समझ पाते हैं, उतना ही कर पाते हैं। दैट इज दी लिमिटेशन। तो यही सब कुछ है, सारी सृष्टि। तो सारी सृष्टि इसी से पैदा हुई। कैसे पैदा हुई? लगातार सारी सृष्टि जो है वो स्पंदित हो रही है, वाइब्रेट हो रही है। तो हम भी, हमारा जो शरीर है वो भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है, हमारा मन भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है, हमारे विचार भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है, हमारे भीतर जो भाव प्रकट होते हैं वो भी एक प्रकार का वाइब्रेशन है। तो अगर हम अपने वाइब्रेशंस को ठीक रखें, कई बार जनरल भाषा में कहते हैं वाइब्स, अच्छी वाइब्स मिल रही हैं, दैट मीन्स यू आर गेटिंग गुड वाइब्रेशंस। अरे वाइब्स ही अच्छी नहीं है, दैट मीन्स यू आर नॉट गेटिंग राइट काइंड ऑफ वाइब्रेशंस। तो हम किसी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सहज लगता है, बहुत सरल लगता है। किसी किसी व्यक्ति से मिलते हैं, घबराहट होती है, थकान होती है, परेशानी होती है। हर व्यक्ति एक फ्रिक्वेंसी है, हर व्यक्ति एक वाइब्रेशन है, और उस फ्रिक्वेंसी और उस वाइब्रेशन के साथ जब हम इंटरेक्ट करते हैं, हम उसके साथ अपने जीवन को कनेक्ट करते हैं, तो उसका एक प्रभाव हमारे ऊपर होता है या हमारा एक प्रभाव उसके ऊपर होता है। तो प्रैक्टिकली इसको कैसे सब चीज़ों को उतारना है कल के सत्र में विस्तार से जाएंगे। आज के सत्र में बस थोड़ा सा संकेत, थोड़ी सी जिज्ञासा पैदा करने की कोशिश की। इसके साथ ही ओम तत्सत परमात्मने नमः। ओम शांति 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 ही।